नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद्भागवतम के छठवें स्कंद 11वां अध्याय 23 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप लोग मेरे पीछे बोलिए, त्रैवर्गिका आयास अयास विदताम अस्मत पति विद्यते पुरुषस्य चक्र तथा अनुमेय भगवत प्रसाद दुर्या दुर्लभ अकिंचन गोचर अन्य। त्रिवर्गिका या सविधात्म सत्पकम् बोलिए, पतिर्बृहत्ते पुरुषस्य शक्र ततो अनुमाय भगवत प्रसाद जो दुर्लभ अकिंचन गोचर सर अन्य। त्रिविध त्रिवर्गिकाज त्रिवर्गिकाया सविदिधात्म स्मत पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो अनुमेय भगवत प्रसादो जो दुर्लभ अकिंचन गोचर अन्य। बोलिए,
ते पुरुषस्य शक्र ततो अनुमेय भगवत प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन गोचरस्न।
हरे
माताजी, अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद। हमारे श्री भगवान अपने भक्तों को धर्म अर्थ तथा काम के लिए वृथा प्रयास करने के लिए वर्जित करते हैं। हे इंद्र, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे भगवान कितने दयालु है। ऐसी कृपा केवल शुद्ध भक्तों के प्राप्त है, भौतिक लाभ के चाहने वाले व्यक्तियों को नहीं। आप लोग मेरे पीछे बोलिए, हमारे श्री भगवान अपने भक्तों को धर्म अर्थ तथा काम के लिए वृथा प्रयास करने के लिए वर्जित करते हैं। हे इंद्र, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे भगवान कितने दयालु है। ऐसी कृपा केवल शुद्ध भक्तों के प्राप्य है, भौतिक लाभ को चाहने वाले व्यक्तियों को नहीं। तात्पर्य, मानव जीवन के चार उद्देश्य है, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष। सभी मनुष्य सामान्यतः प्रथम तीन की कामना करते हैं, किंतु भक्त को इस जीवन तथा अगले जीवन में श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई भी इच्छा नहीं रहती। शुद्ध भक्तों पर भगवान की विशिष्ट कृपा यही होती है कि वे उसे धर्म अर्थ तथा काम की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले वृथाश्रम से बचा लेते हैं। किंतु यदि कोई इन लाभों को चाहता है तो भगवान उसे अवश्य प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ इंद्र भक्त होकर भी भौतिक बंधन से उदार माने पाने का इच्छुक नहीं था। उन्हें उल्टे वह इंद्र तृप्ति तथा स्वर्गलोक के उच्च स्तरीय भौतिक सुख चाहता था। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण वृत्रासुर ने केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा की तथा भगवान ने इंद्र द्वारा उसके शारीरिक बंधन को विनष्ट कराकर अपने धाम पहुंचने की व्यवस्था कर दी। वृत्रासुर ने इंद्र से प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके वह अपना वज्र चलाए, जिससे इंद्र तथा वह दोनों ही भक्तों की दिशा में अपने अपने अनुसार लाभ उठा सके। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाखया चक्षुरुपिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां सह
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणाललिता श्रीविशाखानितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे हरे हरे
हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं सभी सीनियर भक्तों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद प्रदान करे जिससे मैं श्रीमद् भागवतम के विषय में कुछ बोल सकूं। हर भक्तों के आशीर्वाद के बिना मेरा कोई योग्य नहीं है कि मैं श्रीमद् भागवतम के बारे में कुछ बोलूं। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है भक्त लोग मुझे आशीर्वाद करें जिससे मैं श्रीमद् भागवतम के बारे में बोल पाऊं। विशेष करके श्रीमद् भागवतम के छठवां स्कंद जो है इसे पोषण तत्वों के बारे में, जैसे भागवत में 10 तत्व है 10 विषय में वर्णन है, लेकिन उससे इसमें छठवां अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण स्कंद है जिसमें पोषण तत्व का वर्णन है और यहाँ किस प्रकार भक्ति का पोषण होता है उसके बारे में बताया गया है। जिससे हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं, पहले तो आजमल चरित्र था और आजमल चरित्र में किस प्रकार नाम के महात्म्य बताया गया और किस प्रकार आजमल ने पाप कर्म करते हुए भी अपना अंतिम समय में अपने भगवान की अपने बेटे को साधन बनाकर भगवान के नाम लिया और किस प्रकार वो उद्धार हो गया। और इस प्रकार फिर हम यहाँ बुत्रासुर की कथा सुनते हैं और बुत्रासुर कथा में हम देखते हैं किस प्रकार बुत्रासुर एक असुर के शरीर में रहते हुए भी वो भगवान की किस प्रकार शुद्ध भक्ति में लगा था और किस प्रकार इंद्र देवता के शरीर में रहकर भी वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया। और इसी प्रकार हम आगे देखेंगे आगे के अध्याय में बुत्रासुर की अगले जन्म का वो क्या थे उसके बारे में चित्रकेतु महाराज के बारे में बताते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम जो है हमारा भक्ति का पोषण करता है। तो ये अध्याय भक्तों के जीवन में जब ये पढ़ते हैं हम, इसको बारंबार पढ़ने से हमको भगवान की भक्ति करने के लिए इसमें प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम में जो ये 11वां अध्याय है ये बुत्रासुर के दिव्य गुणों का वर्णन है और यहाँ किस प्रकार बुत्रासुर के अंदर बहुत से भगवत गुण थे उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ जो 23 नंबर श्लोक में बुत्रासुर इंद्र को किस प्रकार कहते हैं कि किस प्रकार वो जो भक्त होते हैं भौतिक संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए वो प्रार्थना नहीं करते हैं, वो भगवान के भक्ति में लगा रहते हैं। तो प्रभुपाद भी तात्पर्य में बहुत सुंदर से वर्णन किए हैं कि इंद्र एक भक्त है भगवान के, फिर भी वो उसको मन में भौतिक इच्छाएं थे। वो ये चार भौतिक समाज में चार पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य के पहले में ही, तो भौतिक समाज में जो लोग होते हैं तो ये पहले तीन चीजों में लगे हुए धर्म अर्थ और काम, मोक्ष की किसको चिंता नहीं है क्योंकि भौतिक समाज में लोगों का मति इस प्रकार भ्रमित है कि और धर्म करते हैं, धर्म का इसलिए पालन करते हैं धर्म को क्योंकि उसके वो धर्म पालन से कुछ उनको अर्थ का प्राप्त हो सके। इस प्रकार बहुत से लोग होते हैं, बहुत से धर्म कार्य दान धर्म करते हैं, लेकिन उस धर्म का पालन करते हुए भी उनका इच्छा जो भौतिक सुख पाने की रहती है उससे, जैसे हम सुनते हैं कई लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं तो हुंडी में कुछ दक्षिणा देते हैं लेकिन उससे कुछ पाना चाहते हैं। जय श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की। तो यहाँ जो प्रभुपाद वर्णन करते हैं तो ऐसे भौतिकवादी लोग जो होते हैं वो धर्म अर्थ और काम इस चीजों में लगे रहते हैं। तो इंद्र भी एक भक्त होने के कारण, लेकिन वो भगवान से शुद्ध भक्ति मांगने के जगह वो भगवान से भौतिक सुखों के कामना करता था क्योंकि वो देव जोनि में रह के इतना भोगी बन जाते हैं कि देवता लोग वो, और जिस प्रकार कहा जाता है आग में जैसे घी डालेंगे वो और जलता रहता है, उसी प्रकार जितने भी हम शरीर को इंद्र तृप्ति देते हैं उसका और कामनाएं बढ़ती है। उसी प्रकार देव जोनि में रह के वो इतना भोग पाते हैं देवता लोग कि उनको इंद्र तृप्त नहीं होता है, फिर भी और उनको चाहते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो जानते हैं किस प्रकार ये भौतिक सुख, जो भौतिक वस्तु में धर्म अर्थ काम में कोई आनंद नहीं है, और भक्त तो मोक्ष का भी कामना नहीं करता है। तो जो यहाँ वर्णन है कि किस प्रकार इंद्र एक भक्त होकर भी भौतिक सुख चाहता था, लेकिन वृत्रासुर एक असुर जोनि में रहते हुए भी वो भगवान की दिव्य भक्ति में अपना मन को लगाया था। तो इसके पहले हम आगे के 20 अध्याय में पढ़ेंगे, हम देख पाएंगे जहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं किस प्रकार वृत्रासुर पहले जन्म में महाराज चित्रकेतु थे और उनके श्राप सती के अभिश्राप के कारण उन्हें इस असुर जोनि में प्रवेश करना पड़ा। क्योंकि जब भी महाराज चित्रकेतु भगवान की भक्ति प्राप्त हुए ये नारद और अंगिरा मुनि के कृपा से, और उनके कृपा से नारद जी ने उन्हें भगवान शंकरषण के मंत्र दिए थे और जिन मंत्र को 7 दिन में जप कर उन्होंने शंकरषण जी का दर्शन प्राप्त किया था, और उन्होंने उनको ऐसे एक विमान मिला था जिस विमान में बैठकर वो पूरा विचरण करते थे। और एक ऐसी घटना है जब विमान में भ्रमण करते थे, एक बार कैलाश के ऊपर से जा रहे थे और देखे भगवान शिव माता सती को अपने गोद में बिठाकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर बोल रहे हैं। तो इसको देखकर उन्होंने थोड़ा हंसा और कुछ कहने लगे, तो इससे एक क्रोध होकर सती ने उनको श्राप दे दिया कि तुम असुर जोनि में प्राप्त हो। लेकिन यहाँ मैं एक प्रवचन में सुन रहा था, वहां एक प्रभु जी बोल रहे हैं कि हमको यह ध्यान देना चाहिए कि देखना चाहिए माता सती ने उन्हें असुर जोनि में जाने को आदेश दिया लेकिन असुर भाव को प्राप्त करने के लिए श्राप नहीं दिया। तो वो जो श्राप था उनका असुर जोनि में जाने के लिए, तो वृत्रासुर महाराज चित्रकेतु असुर जोनि में प्रवेश तो कर लिए सती जी का श्राप के कारण, लेकिन उनका जो भक्त का भाव था वो भाव बना रहा। तो उनकी जो भक्ति भाव, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं नेहा विक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा सा भी कोई धार्मिक कार्य करता है तो वो बहुत बड़े विपत्ति से बच जाता है। तो भक्त का, जैसे भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, नमे भक्त प्रणश्यति कि प्रम भवति धर्मात्मा स्वसत् संति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाना ही नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी पतन नहीं होता है। तो भक्त जिस भी जोनी में जाए, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी अनेक भजन में लिखते हैं, कहीं भी जोनी में जाऊं लेकिन मैं जिस भी जोनी में जाऊं वहां मैं आपकी स्मरण रख पाऊं। इस प्रकार से हमारे आचार्य लोग बहुत से भजन में वर्णन करते हैं। तो भक्त के लिए कोई तकलीफदायक चीज नहीं है जो किसी भी जोनी में जाके वो भगवत भजन को भूल सके। तो भगवान की कृपा से जब भी कोई भक्ति को प्रारंभ करता है, भक्ति प्रारंभ करने से उसके जीवन में भक्ति के कारण भगवत कृपा बनी रहती है। तो ये भक्ति प्राप्त करना भी बहुत दुर्लभ है। जैसे कि इस भक्ति का दुर्लभता को श्रीमान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए, और उसमें वो वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में कि किस प्रकार बहुत जोनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है, और इसके बारे में बताते हुए कि स्थावर जंगम और ये दो प्रकार की भेद है, उसमें जलचर और स्थलचर की भेद है, और इसमें भी मनुष्य जाति तारा मध्य मनुष्य जाति बहु अल्पतर म्लेच्छ पुलिंद बौध सबर तार मध्य अध्यक्ष का कर्म निष्ठ। इन लोगों के बीच में भी ये चार लाख जोनी में मनुष्य जोनी, जो कम जोनी में भी अनेक भेद है, म्लेच्छ जवन पुलिंद बौध सबर, ऐसे अनेक भेद है मनुष्य में भी। और उसमें कहते हैं कि इस प्रकार उसमें भी कर्मी है ज्ञानी है, तार मध्य बहु कर्मनिष्ठ कर्म कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, और एक कोटि ज्ञानी मध्य दुर्लभ कृष्ण भक्त। मैं बताते हैं एक कृष्ण प्रकार जो कृष्ण भक्त होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। तो भौतिक समाज में बहुत से कर्मी लोग रहते हैं, कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, धर्म साधन करते हैं, लेकिन उनका इच्छा है भौतिक सुख पाने के लिए। लेकिन जो भक्ति प्राप्त कर लेता है जो व्यक्ति, वो जानता है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले संत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले संत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव संत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव संत। तो महाप्रभु ये शिक्षा देते हुए इस अध्याय में कहते हैं किस प्रकार जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी ये सब आसान थे, लेकिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर लिया है शांत रहता है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान इस प्रकार कहते हैं, जो ही संसर्षा भोगा दुख जो ने अयवते आदि अंतवंतस्तु कौन्तेय नाते सुरमते बुधा। तो जो व्यक्ति भौतिक सुख के इच्छा से कामना करता है, भौतिक इच्छा सुख देह सुख जो ही संसर्षा भोगा, ये दुख जो नहीं अयवते दुख का जननी है। यहाँ दुख जब हम भौतिक सुख देह सुख प्राप्त करना चाहते हैं इससे दुख उत्पन्न होता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ऐसे कार्य में कभी रमणीय आनंद नहीं लेते हैं। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं इस कार्य में नहीं रमते हैं। तो जो चित्रकेतु महाराज सती के अभिशाप के कारण आज उनका जो आसुरिक शरीर प्राप्त हुआ है उस शरीर में भी वो रहकर भगवान की भक्ति को जानते थे, भक्ति का महात्म्य को जानते थे और भक्ति करने से किस प्रकार सुख आनंद प्राप्त होता है उसको जानते थे। चित्रकेतु महाराज उनके जीवन में सुख का कोई कमी नहीं था। कहा जाता है उनके अनेक रानियां थे और वो अपने जीवन में अनुभूति भी कर लिए, वो भौतिक संसार में फंस गए थे। तो चित्रकेतु महाराज आगे के अध्याय में बताते हैं कि किस प्रकार मैं भौतिक कीचड़ में फंस गया था। वो भौतिक संसार के सुख को वो कीचड़ के समान तुलना करते हैं और वो बताते हैं कोई हाथी अगर ऐसे दलदल में कीचड़ में फंस जाए वो कभी अपने प्रयास से निकल नहीं पाएगा, और अगर कोई हाथी दूसरे हाथी चाहे उसको मदद करने के लिए तो वो हाथी भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हाथी का शरीर इतना वजनदार होता है जैसे वो कीचड़ में जाएगा वो और फंसते जाएगा। तो वहां उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक भौतिकवादी व्यक्ति दूसरे भौतिकवादी व्यक्ति को कभी उद्धार नहीं कर सकता है। तो अपने जीवन की अनुभूति को बताते हैं कि एक किस प्रकार एक भक्त ही दूसरे भौतिकवादी व्यक्तियों को भौतिक संसार की कीचड़ से निकाल सकता है, क्योंकि नारद मुनि की कृपा से ही वो भौतिक संसार की माया से निकल पाए थे, क्योंकि उन्होंने नारद मुनि से कृपा से उनके कोई संतान नहीं था तो उनको नारद मुनि और अंगिरा मुनि के कृपा से संतान प्राप्त हुआ। वो नहीं ना कर रहे थे लेकिन ये नहीं सुने, पुत्र की कामना किए, हर्ष शोक पुत्र प्राप्त हुआ और जिनके कारण उनको इस दुख को भी झेलना पड़ा। पुत्र तो प्राप्त हुआ, कुछ दिन के बाद बहुत से रानी है और एक बच्चा है तो उसके रानियों के कपटता के कारण फिर जहर देके पुत्र को मार दिए, फिर दुख आया क्योंकि पुत्र का नाम ही हर्ष सुख था। तो ऐसे उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार की दुखों को देखे हैं। तो बाद में जब ही उन्हें इस शरीर प्राप्त हुआ, क्योंकि पूरी जीवन भर चित्रकेतु शरीर में रहकर भी पूरा भक्ति किए थे, भक्ति को प्राप्त किए थे नारद जी की कृपा से, और अंतिम समय में जब भी उन्होंने श्राप बसा फिर वृत्रासुर के शरीर प्राप्त हुए, उस शरीर में ये भी ज्ञान था उन्हें, इसके कारण उन्होंने अपना भजन जारी रखे, वो भगवान के प्रति उनका श्रद्धा बना रहा और वहां वो इंद्र को धिक्कार रहे, रे इंद्र तुम स्वर्ग का राजा है, हाँ तुम भगवान की इतने करीबी पार्षद हो, भगवान की कार्य संभालते हो, भगवान की व्यवस्था संभालते हो, फिर भी तुम्हें ये भौतिक सुख के लिए कामना कर रहे हो, लेकिन मैं तो भगवान की दासों का दास बनना चाहता हूं। आगे के श्लोक में बहुत से सुंदर से प्रार्थना करते हैं और उसमें वो बताते हैं किस प्रकार कि वो दासानुदास बनना चाहते हैं, भगवान की दास नहीं, वो कहते हैं कि मैं दासानुदास बनूंगा, और उसमें वो किस प्रकार फिर आगे वर्णन करते हैं उस अलग अलग श्लोकों में कि किस प्रकार जो बछड़ा होता है किस प्रकार गाय के दूध पीने के लिए कितना लालायित रहता है, जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के प्रति ना आकर्षित रहता है, उसी प्रकार मैं तो श्री भगवान के चरण कमल में मेरा मन इस प्रकार लगाना चाहता हूं। इस प्रकार यहां भी इस श्लोक में भी वो कहते हैं कि भगवान कितने दयालु है, ऐसे कृपा केवल शुद्ध भक्त के प्राप्य है, भौतिक लाभ के चाहने वाले व्यक्तियों को नहीं। तो हमें ये देखना चाहिए भगवान कितने कृपालु है। यहाँ वही बात कह रहे हैं कि भगवान जब भी कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भगवान उसको ऐसे जो चार पुरुषार्थ के लिए जो व्यक्ति कार्य करते हैं उससे दूर रखते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ही कहते हैं
प्रभु कहे आमा भजे मागे विषया सुख प्रभु कहे आमा भजे मागे विषया सुख अमृत छाड़ी विष मागे से बड़ मूर्ख आमी विज्ञते ना किया विष आमी दिव सचरण अमृत दिया विष भुलाइब।
तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि लोग मेरा भजन करते जो भक्त हैं भजन करते हैं आमा भजे मागे विषया सुख प्राप्त करने के लिए लोग आते हैं भगवान के पास। और इस विषया सुख में भगवान तो जानते हैं, भगवान कहते हैं मैं तो विज्ञ हूं आमे विज्ञ मैं ज्ञानी हूं तो मैं मेरे भक्त को ऐसे भौतिक सुख कैसे दे सकता हूं। आमे विज्ञ तेना किया विष आमी दिवो उसको क्यों मैं जहर दूंगा। तो इस विष को मैं दूर करने के लिए तो मैं क्या करूंगा। तो महाप्रभु कहते हैं कि आमे विज्ञ तेना किया विष आमी दिवो स्वचरण अमृत दिया विष भुलाइबो अपने चरण अमृत को देकर मैं उसकी जो अंदर भावना है जो जहर खाने की इच्छा है उसको मैं दूर कर दूंगा। तो यहां अनेक लीलाएं भगवान की, इसमें भगवान ने भक्तों को कभी विषय सुख नहीं देते हैं। एक बार की घटना है, जगन्नाथपुरी में श्रीमन महाप्रभु रहते थे और हमेशा तोटा गोपीनाथ में हो ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के चरित्र को सुनते थे गदाधर पंडित से। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमेशा जो विभीषण है वहां आते थे भगवान के दर्शन करने के लिए। तो एक व्यक्ति था वो जगन्नाथ पुरी आया था, पुरी में वो कुछ इच्छा था धन की कामना से आया था जगन्नाथ जी के पास धन मांगने के लिए। तो जगन्नाथ जी को धन मांगा तो वो बहुत दिन प्रयास किया प्रार्थना करके भगवान से कुछ धन प्राप्त हो करके, लेकिन धन का प्राप्ति नहीं हुआ। उसके कारण वो अपने अब से नाराज होकर वो सोचा मैं ये जीवन रख के कोई कार्य नहीं, व्यर्थ है मेरा जीवन, मैं अभी जाके समुद्र में मैं अपने जीवन को दाह कर दूंगा। इसके लिए वो समुद्र के और रात को जा रहा था तो उस समय वो देखा समुद्र के आकाश के मार्ग से एक व्यक्ति आ रहा है और देखा समुद्र के से चल के आ रहा है। देखते हैं कि वो बहुत बड़ा शरीर में था, जैसे नजदीक आता है वो छोटा छोटा होके जा रहा है। तो आते आते उसके सामने देखा कि अपने समान हो गए। तो वो कहा भाई आप कौन है, कहाँ से आ रहे और कहाँ जा रहे। बोले मैं वो पूरा ये डिटेल बताया नहीं, बोले मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो वो भी बोला ठीक है मैं भी आपके साथ फिर से जाऊंगा जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। वो बोले कि तुम क्यों इतना रात गए, क्यों आ रहे थे। बोले कि मैं मरना चाहता हूं, मैं धन का इच्छा किया लेकिन मुझे धन प्राप्त नहीं हुआ, मैं अभी मरना चाहता हूं। बोले चलो तुम मेरे साथ चलो जगन्नाथ जी के पास। तो अपने साथ लेके गए तो वो व्यक्ति देखा ये व्यक्ति जगन्नाथ मंदिर जी के जाने के बदले ये तोटा गोपीनाथ के मंदिर में गया और जाके वहां चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण में प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु से वार्तालाप किया। और वहां चैतन्य महाप्रभु को जो विभीषण उन्होंने बताया कि इस प्रकार ऐसे धन की कामना रखने वाले व्यक्ति वो आया है आपसे प्रार्थना करना कर रहा है। तो महाप्रभु वहां बोले मैं ऐसे व्यक्तियों से कभी भी नहीं मिलूंगा, मेरे पास मत लाओ, तुम चाहते तो तुम्हारे कुछ धन है तो उसको दे के भगा दो यहां से। तो महाप्रभु ऐसे जो व्यक्ति भौतिक सुख के लिए इच्छुक है ऐसे व्यक्तियों को नहीं चाहते हैं और जो विषय व्यक्ति हैं वह नहीं चाहते हैं। जैसे कि हर एक लीला में जैसे जो राजा थे प्रताप रुद्र, उनको भी महाप्रभु मिलने से इनकार कर दिए। उनके संगीजन बहुत प्रयास किए कि वो जाके महाप्रभु मान ले कि प्रताप रुद्र उनसे मिल सके, लेकिन महाप्रभु कहे ऐसे विषय लोगों से मैं मिलना नहीं चाहता हूं। लेकिन हम यहां देख सकते हैं, यहां धृतराष्ट्र कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसे ऐसे भौतिक सुखों से के लिए प्रयास करने के लिए नहीं देते हैं, उनको उस भौतिक सुखों की प्रयास से दूर रखते हैं। तो भक्ति की शुरुआत होने से हमारे हृदय में जब भक्ति का बीज उगता है तभी हमारे हृदय से धीरे धीरे, जैसे पद्म पुराण में भगवद गीता में प्रभुपाद 9वें अध्याय की दूसरे श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कोट करते हैं कि किस प्रकार अपारब्ध फलम पापम कूट बीज फलम मुखम क्रमेण नैव पलियते विष्णुर्भक्ति रतात्मना। जो व्यक्ति के अंदर प्रारब्ध कर्म की पाप, अपारब्ध कर्म की पाप, कूट बीज ऐसे रूपी पाप का बीज होता है, उसके हृदय से कृष्ण भक्ति करने से क्रमेण नैव पलियते, क्रम से वो जो विषय या इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, भौतिक वासना है या पापमय इच्छाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान की कृष्ण की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करता है तो भगवान उसको अपने जीवन में कभी इस प्रकार की भौतिक इच्छा से आकर्षित होने के लिए नहीं देते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में ही भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति का इच्छा है कि इस प्रकार की कि धन का इच्छा है, मोक्ष का इच्छा है, तो कहते हैं अगर भक्ति योग से तिब्रेण भक्ति योगेन, फिर भी उसे ये भक्ति करना चाहिए। और भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं जो जथा मम प्रपद्यन्ते स्ताम स्तैव भजाम्य हम मान अनुवर्तते वर्तन्ते पुरुष पार्थ सर्वसम। कहते हैं जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसको वही देता हूं। लेकिन यहां धृतराष्ट्र कहते हैं कि भगवान ऐसे हैं कि कभी भक्तों को वो भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने नहीं देते, भौतिक कार्य में लगने नहीं देते हैं, तो उसको भगवान अपनी कृपा से उसे शुद्ध कर देते हैं। तो भगवान इतने कृपालु होते हैं कि हमें भक्ति करने से, भगवान की भक्ति की प्रारंभ से ही हमें धीरे धीरे, जैसे हम नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम श्लोक में जब गाते हैं नित्यम भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्टिकी, हे भगवान की भागवतम को नित्य पढ़ने से हमारा हृदय में जो भौतिक इच्छाएं हैं वो दूर हो जाता है। इसी प्रकार जब भी हम भक्ति करते हैं, भक्ति करने से ही हमारी जो भौतिक प्रवृत्ति है, भौतिक इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं हम इतने साल से मंदिर में आश्रम वास करते हैं लेकिन हमारा भौतिक इच्छाएं बढ़ने के बदले, सॉरी घटने के बदले बढ़ रहा है। जितने भौतिक वस्तु है, किसका तो बात दूर की बात है, मैं मेरा कह रहा हूं कि भौतिक संसार में रहने के कारण लोगों का भौतिक इच्छाएं बढ़ते हैं, लेकिन हम भगवान के सानिध्य में रह के भक्ति करते हुए भी लेकिन हमारा भौतिक इच्छाएं कम नहीं हो रहा है। कारण जिस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, वो कहानी बताते हैं जिस प्रकार नौका वाला रात भर नौका चलाया, परिश्रम किया, लेकिन क्या हुआ, रंगर निकालना भूल गया था। तो इसी प्रकार हम तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति की महात्म्य या वैष्णव की महात्म्य को हम भूल गए हैं। वैष्णव के चरण में अपराध ही हमारा भक्ति में बाधक है। और वैष्णव अपराध, श्रीमान महाप्रभु कहते हैं वैष्णव अपराध हय हतिमत उपड़ाए छिंडाए बा सुखी जाए पत। तो यहां भक्ति
कि बगीचे में अगर पागल हाथी प्रवेश करता है जिस प्रकार, तो यहाँ महाप्रभु ने तीन बात बताए, उपुड़ाए छिंडाए बा सूखी जाए पाता। तो तीन प्रकार की वैष्णव अपराध होता है और तीन प्रकार के वैष्णव अपराध से तीन प्रकार की क्रिया होता है भक्ति लता के साथ। क्या होता है, जो जब हम कोई उन्नत वैष्णव से शुद्ध भक्त के चरण में अपराध करते हैं तो हमारा जो भक्ति लता है वो जड़ से ही उखड़ दिया जाता है। तो उपड़ाए छिंडाए, कोई मध्यम अधिकारी के चरण में अपराध किए तो थोड़ा सा हमारा भक्ति लता का थोड़ा सा पत्ता टहनिया टूट जाएगा, और कनिष्ठ वैष्णव की चरण में अपराध करते हैं तो भक्ति लता की पत्ते सूख जाएंगे। तो महाप्रभु यहां बताते हैं, उपड़ाए छिंडाए वा सूखी जाए पातो। इस प्रकार भगवान की भक्ति के लिए पहले हमें भगवान की भक्तों की शरण में जाना पड़ेगा। भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में कहते हैं, ठाकुर वैष्णव पद हवनी रसु संपद, ठाकुर वैष्णव पद हवनी रसु संपद, आश्रय लइया भजे कृष्ण तारे नहीं त्याजे, आश्रय लइया भजे कृष्ण तारे नहीं त्याजे, आर सब मरे अकारण, आर सब मरे अकारण। कहते हैं जो ठाकुर वैष्णव की चरण में जो व्यक्ति ठाकुर वैष्णव पद इस अवनी रस संपदा, इस पृथ्वी को अवनी कहा जाता है, तो यहाँ का सबसे बड़ा दुर्लभ संपत्ति कोई है तो कहते हैं ये वैष्णव की चरण। और जो व्यक्ति आश्रय लइया भजे, जो व्यक्ति वैष्णव की चरण में गुरु साधु गुरु वैष्णव के चरण में आश्रय लेता है तो वहां कृष्ण उसे नहीं त्यागते हैं, कृष्ण तारे नहीं त्याजे, हार सब मरे अकारण, और सब अकारण में मर जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण है कि वैष्णव की चरण का आश्रय लेना। हो भगवान के भक्त जो होते हैं भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, श्रीमद् भागवतम में भगवान स्वयं कहते हैं। तो ऐसे भगवान के भक्तों के चरण में अपराध होने से हमारा भक्ति का जो बीज है नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें भूतासुर भी आगे वर्णन करेंगे किस प्रकार वो चाहते हैं कि वो दासानुदास बनना, वो दासों का दास बनकर भगवान के चरण कमल का चिंतन करना चाहते हैं। तो ऐसे हमें शिक्षा लेना चाहिए। तो चाहे कोई भी शरीर हो, शरीर भजन के लिए बाधक नहीं है, किसी भी शरीर में रहकर आत्मा भजन कर सकता है। आत्मा शरीर से भिन्न होता है, आत्मा और शरीर में अंतर है। तो जो आत्मा है वो चाहे किसी भी शरीर में जाए वो कहीं भी रहकर भजन कर सकता है। इसलिए पुत्रासुर के शरीर में भी रहकर महाराज चित्रकेतु अपने पुनर भक्ति को जागृति किए और वो वहां भगवान की कृपा को देख रहे थे। इंद्र को बोल रहे हैं, इंद्र तुम तुम्हारा वज्र चलाओ, आज तुम्हारा वज्र से मुझे मारो, जिसके कारण मैं उद्धार होके मैं भगवान की भक्ति को प्राप्त होगा, भगवान की धाम को प्राप्त होगा। तुम तो एक तुच्छ सुख के लिए, हाँ ये भौतिक मत्य जगत की सुख को इच्छा करते हो जो त्यागे हुए विष्टा के समान है, लेकिन मैं तो भगवान की दिव्य भक्ति, दिव्य चरण कमल, भगवान शंकरषण की चरण को प्राप्त करूंगा, से मेरा भक्ति का आनंद प्राप्त करूंगा। तो जो भक्त होता है वो जानता है कि भगवान किस भौतिक संसार में, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक जगत दुख का घर है, तो वो जानता है कि भगवान की चरण ही एक आश्रय है। जैसे केवलाष्टकम में कहा जाता है कि सत्यम सत्यम पुनर्सत्यम हरि नाम एव केवलम। हाँ, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत पूर्ण मायामय जगत सत्यम सत्यम पुनर्सत्यम हरेर नाम एव केवलम। कहते हैं कि ब्रह्म लोक से लेकर नीचे के लोक जितने भी लोक है भौतिक जगत में ये माया की जगत है। और हरिनाम चिंतामणि में भी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बीरजार यही पारे जत लोक हय माईक वैभव बोली सर्व लोक कय। ये बीरजा नदी के इस पार में जितने भी लोक है ये भगवान की माईक जगत है, माया की जगत है। तो इस माया की भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति आता है उसको दुख माया में पड़ना ही है। लेकिन हिजोलिनेस गोरगोविंद महाराज कहते हैं कि इस माया के जगत में आने के बाद भी यहाँ तीन व्यक्ति स्वतंत्र रहते हैं, वो इस जगत से अलग है। कहते हैं भक्ति, भक्त और भगवान, ये तीनों इस भौतिक जगत का नहीं है। लेकिन ये तीनों स्वतंत्र होने के बाद भी ये तीनों में से परम स्वतंत्र भक्त है। तो क्योंकि भगवान भक्त, भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र ही द्विजः साधु ही ग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जनप्रिय। कि मैं भक्त का अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन। और जो भक्ति है वो स्वयं भक्ति देवी अपने आप को किसको नहीं दे सकता। तो भगवान और भक्ति ये दोनों स्वतंत्र होने के पर भी ये पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, ये दोनों भक्त के अधीन है। लेकिन भक्त जो होता है इस भौतिक संसार से पूर्ण स्वतंत्र होता है। इसलिए शुद्ध भक्त के चरण में जब हम अपराध करते हैं तो हमारा भक्तिमय जीवन में बाधा आता है। तो भक्त वैष्णव जो होते हैं बहुत दयालु होते हैं, तो वो अपराध को नहीं देखते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार उनका चरण धूलि जो है कभी माफ नहीं करता है। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए कि किस प्रकार वैष्णव अपराध ना होए। इसलिए इंद्र जब भी वृत्रासुर को मारा तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, फिर उसको अनेक दिन तक कष्ट भोगना पड़ा। तो ऐसे हम अगर सहज से ले लेंगे भक्ति को, जैसे जितना सरल है भक्ति उतना ही कठिन है। खुरस्य धारा निशितम दुरत्तया दुर्गम पथस्य कवियम विदंती, ये खुर के धार के समान है। तो ये एक खुर के धार में चलना कितना सतर्कता वापरना पड़ता है। उसी प्रकार हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है तो हमको बहुत से सतर्क रहना चाहिए। तो हमें ये चिंता नहीं रहना चाहिए कि हमारा क्या होगा। हम किसी भी जोनी में जाए अगर भक्ति किए, अगर निष्काम भजन किए हैं तो हम किसी भी जोनी में जाए हमारा कभी भजन हम नष्ट नहीं होगा, हम कभी पतन के ओर नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हम कहीं भी जोनी में रहे ये चिंता नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद भी कहते हैं अगर कोई भक्ति कर रहा है तो समझ ले कि कृष्ण नहीं है और कोई आध्यात्मिक जगत भी नहीं है, तो फिर भी उसके लिए फायदा है। यहां भी वो आनंद से रह रहे हैं, यहां भी आनंद से हम लोग खा रहे, नाच रहे, गा रहे, और फिर नेक्स्ट जन्म में भी नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अभी तो आनंद में है। इसलिए भौतिक जगत में हो आध्यात्मिक जगत हो भक्तों के लिए कोई तकलीफ का कारण नहीं, किसी भी जोनी में रहे। जैसे प्रेमानंद ठाकुर एक भजन में कहते हैं कि किस प्रकार कोई भी जोनी में जाकर जो भक्त होते हैं वो भगवान के भजन करते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि जिस प्रकार प्रह्लाद महाराज असुर कुल में जन्म हुए, दैत्य और से प्रह्लाद जन्मी जगत रखिला यश। दैत्य के कोख से जन्म लेकर भी प्रह्लाद महाराज ने अपने पूरा यश को पूरी जगत में भुवन में फैला दिए। इस प्रकार हर कहते हैं जो कपि है, हनुमान जी कपि कुल में जन्म लिए, लेकिन वो कपि कुल में जन्म होकर भी उन्होंने राम जी की प्रिय बन के रहे और असुर के घर में जन्म होकर विभीषण वो भी भगवान की सभा में बैठने के लिए योग्य व्यक्ति हो पाए। तो ऐसे शास्त्र में अनेक हम उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार भगवान के ऐसे अनेक भक्त हैं। खाली मनुष्य ही मनुष्य शरीर में ही रह के कोई भक्त होगा तो जरूरी नहीं, तो पशु जोनि में भी काकभूषणी है, गरुड़ जी है, काली है, सभी पशु जोनि के भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं। तो प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति वैष्णव नहीं है लेकिन अपने अंदर अहम भाव है कि मैं बड़ा भक्त हूं, गर्व है, तो ऐसे व्यक्ति गर्भ जो है मिथ्या गर्भ है। श्री कृष्ण भजन नहीं अधिकारी, तो जो व्यक्ति कृष्ण भजन करता है उसमें दंभ कपट का कोई जगह नहीं है। तो जो व्यक्ति निष्काम भजन करता है, जिसके अंदर हृदय शून्य है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, वह व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक में कहते हैं कि नीच जाति नहे कृष्ण भजन र अयोग्य, सत्कुल विप्र नहे भजन र अयोग्य, जे भजे से बड़ अभक्तहीन छार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। जो भगवान की भजन में कहते हैं नीच जाति में कोई जन्म हुआ है, नीच जाति नहीं कृष्ण भजन र बाधा, नीच जाति में जन्म होना ये भक्ति का बाधक नहीं है। यदि वो व्यक्ति वैष्णव के घर में जन्म हुआ है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, लेकिन कृष्ण भजन नहीं कर रहा है, अयोग्य है भजन करने के लिए। हम देख सकते हैं हमारे ऐसे अनेक गृहस्थ भक्त हैं लेकिन उनके संतान भक्ति नहीं करते हैं। तो कृष्ण भक्त के घर में जन्म लेने से हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि हम अगर भक्ति करना है खुद को करना है। तो जब भी हम भक्ति करते हैं तो हमें ये योग्यता प्राप्त होता है। तो कुल और ऐसे ब्राह्मण कुल या शूद्र कुल ये जाति कुल का विचार नहीं रहता है, तो कुल ये बाधक नहीं होता है भजन में। तो जो विप्र कुल कहते हैं सत्कुल विप्र है ना भजन एर योग्य, खाली ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई अच्छे घर में जन्म हुआ है, ब्राह्मण खानदान में जन्म हुआ है, वही व्यक्ति भजन कर सकता है। नीच कुल में जन्म वाला व्यक्ति भी भगवान की भजन कर सकता है। तो यहाँ कहते हैं कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार, कृष्ण के भजन में भगवान के भजन में कोई जाति कुल का विचार नहीं रहता है। इसीलिए कृष्ण भजन कोई किस पे डिपेंड नहीं करता है, हम किसी भी स्थिति में किसी भी जोनी में रहकर भी भगवान की भजन कर सकते हैं। तो ये एक हमें शारीरिक शरीर कभी हमारा भजन में बाधा नहीं रहेगा। तो जहां भी रहे हम, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में भी कहते हैं कि कीट जन्म हो जथा तुया दास, कीट जन्म में हो या ब्रह्म जन्म में हो, किसी भी जोनि में रहो, मैं सदा तुम्हारा दास बन के रहो। बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नाही मोरा आस, ब्रह्मा जन्म होकर अगर तुमसे मैं दूर रहूं ये मेरा आशा नहीं है। तो मैं कहीं भी जन्म में रहू, हाँ स्वर्ग में रहू या नरक में रहू, कहीं भी रहू, मेरा ये इच्छा है कि मैं आपका सदा दास बन के रहूं। इसलिए जो भक्त होता है उसके लिए सब कार्य भगवान से जुड़ा हुआ रहता है और किसी भी जोनी में वो रहकर भगवान के भजन में लगा रहता है। तो वैष्णव होते हैं उनके लिए शरीर बाधक नहीं है, शरीर दुख दे सकता है। जत देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख, निश्चय जानिया से परमानंद सुख। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ वृत्रासुर को हाथ काट दिए, गला भी काट दिए, फिर भी वो आनंद में थे, क्यों? ये वैष्णव की शारीरिक दुख जो उसके लिए बाधक नहीं है, वो जानता है कि मैं अभी जी के भी भजन करूंगा और इस शरीर को त्यागने के बाद भी भजन करूंगा, भगवत प्राप्ति होगा मेरा। सब वैष्णव जो होते हैं वो अपने शारीरिक दुख के ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारे जीवन में अनेक बाधाएं आते हैं, तो हम इस बाधाओं से हमको विचलित नहीं होना चाहिए। हमको बहुत प्रकार की बाधाओं का कष्ट का सहन करना पड़ता है। हाँ, जो कष्ट करता है उसे ही कृष्ण मिलते हैं, बिना कष्ट से कृष्ण नहीं मिलते। भौतिक सुख के लिए भौतिक जगत में लोग कितना कष्ट करते हैं, तो आपको कृष्ण प्राप्त करना है तो कृष्ण प्राप्त करने के लिए तो हमको दुख सहना ही पड़ेगा। लेकिन अभी हम शारीरिक धरातल पे है, शारीरिक चेतना में है, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए साधन भक्ति जो है गुरु शास्त्र के अनुसार जब हम साधन करते हैं धीरे धीरे, ये अभ्यास होके प्रपान ने इसलिए साधन भक्ति को जोर दिए हैं। ये हम सब बद्ध जीव है, बद्ध जगत में होने के कारण हमारे लिए इस सब साधन भक्ति जरूरी है। जो मुक्त जो जीव होते हैं वो इस साधन भक्ति से परे होते हैं। तो हम बद्ध जीव होने के कारण, बद्धता के कारण अनेक जन्म से ये सब करते आए हैं, तो हमारा चेतना में वही है। तो इस चेतना को शुद्ध करने के लिए ही प्रभुपाद ने हमें ऐसे भक्ति की क्रियाएं दिए हैं, जैसे मंगल आरती जप करना, श्रीमद् भागवतम पाठ, हमको भगवद गीता ऐसे हमको दिए हैं। ये आचार्य जो होते हैं वो जानते किस प्रकार की जीव का शोधन हो सकता है। एक छोटा सा मैं कहानी बता के समाप्त करूंगा। एक बार की घटना है, महाराष्ट्र में एक संत हुए नामदेव, उनके एक पुत्र थे, वो एक शादी हुआ था, लेकिन उनका जमाता जो है वेश्याओं के प्रति आकर्षित हो गए थे, तो हमेशा वो वेश्यालय में चला जाते थे। तो उनका पुत्र बहुत परेशानी थे, तो एक बार संत आए उनके घर में, तो उनके पुत्री ने पूरा दुख बताया, तो उन्होंने जाना सब। फिर जब उनका जामाता आए, बोले देखो आप जा रहे हो तो जाओ वैश्यालय में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सब इतना ज्ञानी हो के शास्त्र को जानते हुए आप सब भूल जाते हो, मेरा बेटी जो है विचलित हो जाता है आपकी ऐसे क्रियाओं से, तो मैं चाहता हूँ वो विचलित ना रहे, इसलिए आप क्या करो, रोज उसको भगवद गीता पढ़ के सुनाओ, और सुनाने से उसका मन स्थिर रहेगा। तो उनमें गुड़ तत्व तो क्या था समझ नहीं पाए, वो तो आचार्य जो होते हैं जानते हैं। तो उन्होंने गीता पढ़ने को इसलिए बोला कि वो पढ़ पढ़ के खुद शुद्ध हो जाए और इस क्रिया को, इस कार्यकलाप को छोड़ दे। इसलिए जब भी उनके जामाता भगवत गीता को रोज पढ़ के, हाँ वैश्यालय में जाने से पहले रोज एक गीता के एक श्लोक को पढ़ के उसके पत्नी को समझाते थे, फिर वो चला जाते थे। तो एक दिन ऐसा आया, फिर उनका अंतकरण शुद्ध हो गया, फिर वो ऐसे कार्यकलाप को त्याग दिए। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद आज के दिन ही अमेरिका गए थे। तो प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति है जो हमारे बद्ध जीवों को भगवान के चरण में लेने के लिए ऐसे अनेक प्रकार की भक्तिमय कार्यकलाप दिए हैं हमें, जिससे हम भगवान के और हमारा मन चित्त लगा रहे और हम भगवान को ज्यादा से ज्यादा समझ सकें। तो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जो हमारा मंगलारती आना, भगवान के भजन करना, जप करना, ये हमारे प्रभुपाद की अशेष कृपा है, जो हम जैसे बद्ध जीव को उद्धार करके भगवान के धाम, भगवत धाम लेना चाहते हैं। इसलिए हम जब जैसे आश्रय लैया भजे कृष्ण तारे नाही त्याजे आर सब अरे अकारणी, फिर हम श्रील प्रभुपाद के चरण कमल के आश्रय लेंगे और भजन करेंगे, कितना भी बाधा है हमें कृष्ण भी त्याग नहीं सकते हैं। अगर प्रभुपाद हमें पकड़ के रखेंगे तो कृष्ण भी चाहे तो हमें दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अहम भक्त पराधीन, भगवान स्वयं कहते हैं मैं भक्त के अधीन हूँ, हरे कृष्ण। तो इसलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए, जैसे हम भक्ति कर पाए, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी गलतियां होते हैं, तो इसके लिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए, जैसे मैं अपने आप को शुद्ध कर पाऊँ और यहाँ रह के जीवन में अंतिम तक यहाँ रह के भगवान की सेवा करता रहूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।
श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा।